ஹரி கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சாப்டர் 10 வர்ஸ் நம்பர் 22. இஸ் ஆத்யாத்மிக் ஜான் பிரவேஷ் கரணி சே பஹலே குரு ஆர் கௌரங்க சே கிருபா கி யாச்சனா கர்த்தே ஹுயே மங்கல ஆச்சரண் கரேங்கே தாக்கி ஹம் ஜோ அத்யயன் கர் ரஹே ஹே உஸ்கா பூரா பூரா லாப் ப்ராப்த ஹோ சகே ஜோ கி ஹே கிருஷ்ண பிரேம் கி ப்ராப்தி.
ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அக்யாந்திமிரந்தஸ்ய ஜ்ஞானஞ்சனாஶலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோஹிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபஹ கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுருஹு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ஸ ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகணா ரகுநாதம் விதந்தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதா சகண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதம் ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபீஷ கோபிகா காந்தா ராதாகாந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கே ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சுதி தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வஞ்சாகல்பதருபியஸ்ய கிருபாசிந்துப்ய ஏவ ச பதீதநாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. ஜய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசுதி கௌர பக்தவிந்த. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ஹரி ராம ஹரி ராம 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 ஹரே ஹரே. கிரந்தா ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா மாத கி ஜெய ஹோ. அத்யாய 10 ஸ்லோக சங்கியா 22. கிருப்பையா மேரே சாத் சாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கே முகாரவிந்த் சே நிக்லே ஹுயே இன் அத்யந்த ஹி பவித்ர ஷப்தோ கோ உச்சாரண் கர்னே கா பிரயாஸ் கீஜியே. பகவான் கேதே ஹே வேதானாம் சாம வேதோஸ்மி தேவானாமஸ்மி வாசவஹ இந்திரியாணாம் மனஸ்யாஸ்மி பூதானாமஸ்மி சேதனா வேதானாம் சாம வேதோஸ்மி தேவானாமஸ்மி வாசவஹ இந்திரியாணாம் மனஸ்யாஸ்மி பூதானாமஸ்மி சேதனா வேதானாம் சாம வேதோஸ்மி தேவானாமஸ்மி வாசவஹ இந்திரியாணாம் மனஸ்யாஸ்மி பூதானாமஸ்மி சேதனா. சப்தாத்
वेदानां सामवेदोस्मि, वेदानां मतलब वेदों में, सामवेद अस्मि मैं हूँ, देवानां यानी देवताओं में, अस्मि हूँ वासवः यानी स्वर्ग के राजा इंद्र, इंद्रियाणां यानी इंद्रियों में, मनश्चास्मि मन भी मैं ही हूँ, और भूतानां और भूता यानी जीवों में, अस्मि मैं हूँ चेतना यानी प्राण या जीवनी शक्ति। अनुवाद, भगवान कहते हैं मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग के राजा इंद्र हूँ, और इंद्रियों में मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति यानी चेतना हूँ। एक बार फिर, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे। श्री प्रभुपाद जी छोटे से अपने शॉर्ट तात्पर्य में बहुत ही बड़ी बात समझा देते हुए कहते हैं, पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम्, पंगुं लंघयति किरम्, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। भगवान अर्जुन को अपनी विभूतियों के विषय में बताना प्रारंभ कर चुके हैं। जैसे हम जानते हैं 10वां अध्याय जिसका नाम है विभूति योग, तो भगवान हमें ये बता रहे हैं कि किस प्रकार इस भौतिक जगत में तुम हर क्षण हर एक वस्तु को देखकर कैसे मुझे स्मरण कर सकते हो। हर एक वस्तु इसीलिए देखने के लायक है क्योंकि उसके अंदर कृष्ण है। अगर कृष्ण अपना एक अंश उस वस्तु में से निकाल दे तो वह वस्तु स्पर्श तो क्या, केवल देखने के लायक भी ना रह जाए। तो हर एक वस्तु का महत्व इसलिए है क्योंकि वह कृष्ण का जो एक अंश है ना, वो उसके अंदर है। तो जो जो वस्तुएं ग्रेट हैं, जो जो बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, उनमें से कुछ ग्रेट हैं, कुछ ग्रेटर हैं और कुछ ग्रेटेस्ट हैं। तो भगवान जो ग्रेटेस्ट वस्तुएं हैं उनको अपना एक प्रतिनिधि बता रहे हैं यहाँ पर, कि यही क्योंकि वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, इसीलिए वो ग्रेटेस्ट हैं। और जब भी वो ग्रेटेस्ट हैं तो इसका मतलब है क्योंकि वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द ग्रेटेस्ट, जितने भी ग्रेटेस्ट वस्तु हैं उनमें भी कृष्ण सबसे ज्यादा, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बाकी सब पुरुष हैं और कृष्ण पुरुषोत्तम है यानी पुरुषों में भी उत्तम। तो जो जो वस्तुएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो भगवान को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कल हमने पढ़ा कि भगवान ने बताया था कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ। तो ये जो सूर्य है वो भगवान का एक प्रतिनिधि है, वो सूर्य पूजन्य है, उसका आदर करना चाहिए क्योंकि वो भगवान का एक अंश है। लेकिन भक्ति नहीं, भक्ति केवल कृष्ण की जाती, क्योंकि कृष्ण जो है वो ही सूर्य को इस योग्य बनाते हैं, सूर्य को यह पावर देते हैं कि वो जीवों का कल्याण कर सके या संसार में प्रकाश उत्पन्न कर सके। तो ये वास्तव में सूर्य के पास ये पावर कृष्ण का दिया हुआ है। इसीलिए जो कुछ भी आप समझ रहे हो कि इसके पास किसी भी वस्तु के अंदर कोई वैभव है, कोई बल है, कोई कुछ भी है, उसके अंदर कोई भी क्वालिटी है,
तो वो क्वालिटी भगवान की दी हुई है, उसके पास तो जरा सी है और भगवान उस क्वालिटी का समुद्र है। भगवान के पास वो बहुत बहुत विभू है। यहाँ हम सब जितने भी जीव हैं वो अणु हैं और हमारे अंदर गुण भी बहुत ही छोटे, और हम क्या करते हैं छोटे छोटे गुणों से भी आकर्षित हो जाते हैं, कि कोई बल के ऊपर आकर्षित हो जाता है, कोई सौंदर्य के ऊपर, तो कोई धन के ऊपर, परंतु भगवान में वो सब वस्तुएं परिपूर्ण मात्रा में हैं। वो सब भगवान का मतलब ये है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्यस्य एव शरणं भग इति कहा। जिसके पास संपूर्ण यश हो, संपूर्ण सुंदरता हो, संपूर्ण बल हो, संपूर्ण वैराग्य हो, संपूर्ण धन हो, वही भगवान हो सकता है। तो भगवान बता रहे हैं आज अपने कुछ अन्य विभूतियों के विषय में। पहला कहते हैं वेदानां साम वेदोस्मि। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान के जो वेद जो होते हैं ना, वो वेद भगवान ने बनाए हैं, भगवान के शब्द हैं, वेदों के अंदर जो लिखे हुए हैं वो भगवान के शब्द हैं। जब भगवान ने इस भौतिक जगत को क्रिएट किया तो इस भौतिक जगत के लिए एक मैनुअल गाइड वेदों के रूप में दिया। वेदों में वो सब कुछ लिखा हुआ है जो एक जीव को करना चाहिए, और वो सब भी लिखा हुआ है जो उसको नहीं करना चाहिए। वो भी लिखा हुआ है कि ये वस्तुएं प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और वह भी लिखा हुआ है कि जीवन के लक्ष्य क्या है। मतलब एक जीव जो कुछ सोच सकता है, जो कुछ कर सकता है, हर एक वस्तु के विषय में भगवान ने, क्योंकि भगवान जो है वो सब कुछ जानते हैं। भगवान कहते हैं 7.26 में वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो कुछ भविष्य में घटित होने वाला है, और जो वर्तमान में घटित हो रहा है, उसको मैं संपूर्ण मात्रा में जानता हूँ। भगवान हर एक वस्तु को जानते हैं। भगवान ये भी जानते हैं कि अगले क्षण हमारे हृदय में क्या इच्छा उत्पन्न होगी, और ये भी जानते हैं कि हमें इस इच्छा को कंट्रोल करना चाहिए, और ये भी जानते हैं कि हम इस इच्छा को कंट्रोल करने में असफल रहेंगे या सफल रहेंगे। वास्तव में तो यदि वेद न होते तो मनुष्य और जानवर, उनमें डिफरेंस करना, उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि उनकी जिंदगी और जानवरों की जिंदगी सेम होती। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते नहीं, कोई यम नहीं होते, कोई नियम नहीं होते, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई एजुकेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। मनुष्य का जीवन भी जानवरों की तरह बीत रहा होता। लेकिन भगवान ने मनुष्य पर कृपा करने के लिए वेदों का निर्माण किया, और सबसे पहले वेदों में पहले एक ही वेद था, सिर्फ एक वेद था, और उसके बाद वेद व्यास जी ने उस एक वेद को चार वेद में विभाजित किया। इसीलिए पहले उनका नाम क्या था, कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था, क्योंकि वो भगवान के शक्ति आविश अवतार थे, भगवान ने जीवों पर कल्याण करने के लिए। क्योंकि एक वेद इतना बड़ा था, इतना विशाल था, कि उसके अंदर चारों वेदों के टॉपिक्स थे। तो कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य के अंदर इतना सामर्थ्य, क्योंकि भगवान इतने विभू हैं कि वो अगर छोटा सा भी कुछ कार्य करते हैं तो वो इतना विशाल होता है कि साधारण जीव की बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाती। तो भगवान ने देखा कि एक वेद तो इतना विशाल है कि किसी भी जीव के पास इतना समय नहीं होगा, इतनी आयु नहीं होगी कि इसको समझने का प्रयास कर सके या इसको केवल पढ़ भी सके। तो फिर उन्होंने जीवों की कृपा करने के लिए, जीवों के ऊपर इसी वेद को सरल करने के लिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके, पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वेदव्यास जी को वेदव्यास जीव के रूप में शक्ति आवेश अवतार दिया। तो उन्होंने वेद का, एक वेद का चार वेदों में विभाजन किया, इसीलिए उनको वेद व्यास कहते हैं, यानी वेदों को विभाजित करने वाला। तो जो प्रथम वेद था ना, वो केवल साम वेद था, वो प्रथम वेद था, और उसके बाद उसको मतलब उसी सामवेद को अलग अलग पोर्शन में पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें से एक को यजुर्वेद, अथर्वेद, ऋग्वेद ये दिए गए नाम, और बाकी जो पोर्शन था उसको सामवेद नाम दिया गया, मतलब उसी में अलग अलग टॉपिक्स वेद व्यास जी ने डाले। तो भगवान कहते हैं वेदानाम सामवेदोस्मि, कि क्योंकि वेदों में सबसे महान सामवेद था, सामवेद है, और उस वो क्योंकि सबसे ज्यादा महान है, सारे वेद उसी में से निकले हैं, तो सामवेद में क्या है, तीनों वेद वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को मिलाकर उसका पूरा निचोड़ सामवेद में दिया गया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं सामवेद में वेदों में सामवेद हूँ, क्योंकि वही सारे वेदों का मूल भी है और सारे वेदों का सार भी है। सामवेद जो है वो सारे वेदों का मूल भी है और सारे वेदों का सार भी है। इसे भगवान कहते हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ। इसका मतलब है संसार में जितनी भी एजुकेशन है, जितना भी ज्ञान है, वो सब वेदों से ही लिया गया है। कोई भी भौतिक जगत में ऐसा ज्ञान नहीं है जो वेदों में नहीं। आज की जो साइंस जो भी कर रही है कार्य, वो रिसर्च कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो अपना कोई ज्ञान बता रही, नहीं, वो रिसर्च कर रही है। रिसर्च का मतलब होता है एक चीज वेदों में पहले से लिखी गई है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जो वेदों में नहीं लिखी हो। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके वेदों के विषय में वेदों के अंदर ज्ञान न हो। कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जो वेदों, चाहे वो शिल्प कला हो, यानी कि जो नहीं बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, चाहे वो जो ड्राइंग करते हैं, चित्रकार की कला हो, चाहे ब्यूटी टिप्स हो, चाहे जड़ी बूटियों से किस तरह से इलाज किया जाता है, किस प्रकार से हम अपने आकार को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, वो एक्सरसाइजेस और हर चीज, मतलब जो कुछ एक व्यक्ति सोच सकता है ना, वो सारी की सारी नॉलेज जो है वेदों के अंदर है। साइंस उसी को फिर से रिसर्च कर रही है। और भगवान कहते हैं क्योंकि सारे संसार में जितना भी ज्ञान है वो वेदों से द्वारा है, और वेदों के अंदर जितना ज्ञान है उसका मूल सामवेद है, तो वो सामवेद मेरा प्रतीक है, मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका मतलब है यदि कहीं कोई ज्ञानी या ज्ञान की कोई बात समझ में आए, तभी फौरन से क्लिक होना चाहिए माइंड के अंदर, देखो कृष्ण कितने महान हैं। आज हम देखते हैं बड़े बड़े साइंसदान बहुत सारे इन्वेंशंस करते हैं, बहुत सारे आविष्कार करते हैं, तो हमको कितना आश्चर्यजनक लगता है कि देखो इनकी बुद्धि कितनी विशाल है, ये कितने बड़े बड़े कार्य करते हैं। जब हम मोबाइल को खाली देखते हैं तो भी हमें दिखता है कि यार क्या इन्होंने आविष्कार किया। किसी के साथ कॉन्टेक्ट करना होता है, एक सेकेंड भी नहीं लगता फौरन, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो, उसके साथ हम बात करते हैं। इंटरनेट पे हर एक वस्तु जो हम चाहते हैं, बस गूगल पे नाम लिख देते तो सर्च हो जाती है। तो हमको कितनी हैरत होती है कि इनकी कितनी विशाल बुद्धि है। लेकिन उनकी बुद्धि को देखकर कृष्ण कहते हैं आपको मुझे याद करना चाहिए कि कृष्ण की कितनी विशाल बुद्धि है जो इस विशाल बुद्धि वालों को उसने बनाया। आज कोई भी अगर कोई अच्छा कार्य करता है, बहुत अमेजिंग आश्चर्यजनक कोई वस्तु दिख रही होती है जो उसने बनाई हो, कोई ऐसा ड्रेस बनाया हो, कोई ऐसा डिजाइन बनाया हो, कोई ऐसा बहुत, तो हमें कैसा लगता है ना कि कितना बुद्धिमान है। तो कृष्ण कहते हैं क्योंकि मैंने ये सारा ज्ञान प्रदान किया है, तो वास्तव में उसे देखकर भी आपको मुझे याद करना चाहिए कि देखो कृष्ण कितने महान बुद्धि वाले हैं। आगे कहा देवानाम अस्मि वासवः, वासवः मतलब इंद्र। देखो कितने सारे देवता हैं इस भौतिक जगह, भौतिक ब्रह्मांड यानी स्वर्ग लोक में। जो स्वर्ग लोक है उसमें बहुत सारे देवता हैं। जीव जब पुण्य कर्म करता है, कम पुण्य कर्म करता है, तो स्वर्ग लोक में रहवासी यानी कि जिस तरह से संसार में हम कैसे रह रहे हैं, इस प्रजा का स्वरूप धारण करके स्वर्ग में जाता है। लेकिन और भी ज्यादा पुण्य कर्म करता है तो वो देवता का स्वरूप धारण करता है, और उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा उसको यदि 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तब उसको जाके इंद्र की पदवी मिलती है। अब देखिए ये जो स्वर्ग में जितने भी जीव रह रहे हैं, चाहे वो स्वर्ग में रहने वाले हों या विभिन्न 33 करोड़ देवी देवता हों या इंद्र हों, उनमें से किसी की भी पदवी इटर्नल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो वही बने रहेंगे। सूर्य है वो सूर्य ही बना रहेगा, चंद्रमा है तो चंद्रमा ही बना नहीं। भौतिक जगत में जैसे जैसे हम कार्य करते जाएंगे उसके अनुसार हमें स्वर्ग लोक में भी जगह मिलेगी, लेकिन वो भी एक लिमिटेड पीरियड के हिसाब से होगी। भगवान कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, जो वेदों का अध्ययन करते हैं और उसके अनुसार बहुत बहुत शुभ कार्य करते हैं तो वो स्वर्ग में जाते हैं और वहां पर जाकर भुक्त्वा भोग करते हैं विशालम, बहुत बहुत समय तक वो भोग करते हैं। तो स्वर्ग के अंदर जो भोग सामग्री को भोगने की जो मात्रा है ना वो बहुत विशाल है, बहुत विशाल मात्रा में हमको स्वर्ग में भोग भोगने को मिलता है। लेकिन इस भौतिक जगत में जो भोग भोगने की मात्रा है ना वो बहुत लिमिटेड है। एक व्यक्ति कुछ भी करे उसके शरीर उसका इतना साथ नहीं देता कि वो अधिक से अधिक खा सके, अधिक से अधिक संभोग कर सके, अधिक से अधिक मतलब उसके पास क्योंकि समय ही कम होता है, उसका शरीर भी ऐसा होता है। लेकिन जो स्वर्ग के प्राणी होते हैं ना उनका भोग शरीर है, वो भोगते हैं बहुत अधिक से अधिक, कोई भी इंद्र तृप्ति का काम होता है वो खाने में या जो भी करने में, तो वो अधिक से अधिक विशालम, इसलिए लिखा तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, वो विशाल रूप से स्वर्ग में आनंद भोगते हैं और फिर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। फिर एक समय ऐसा था क्योंकि वहां पर वो केवल भोग सकते हैं, वहां पर रहकर वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे उनकी जो ये पुण्य है वो इंक्रीज हो, वो डिक्रीज होते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं, एक एक दिन उनका कम होता जाता है। भले ही ज्यादा समय के लिए आप रहो लेकिन अगर कम होते 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 एक दिन ऐसा आता है क्षीण पुण्य कि वो सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं मृत्यु लोकम विशंति। तो एक दिन ऐसा आता है इंद्र की पदवी भी जो है वो उससे ले ली जाती है और दूसरा जो होता है उसको इंद्र बना दिया जाता है। वो पहले से निर्धारित होता है क्योंकि जिसने जैसे कार्य किए होंगे उनके हिसाब से भगवान ने पहले से निर्धारित किया होता है कार्य। जो इस तरह से भले ही इंद्र जो है वो बहुत बहुत घोड़ा छुड़ाता है लेकिन फिर भी यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि देवानाम अस्मि वासव, के वासव जो इंद्र की पदवी है ना वो बहुत मुश्किल से मिलती है। हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो एक अश्वमेध यज्ञ कर सके, यहाँ तक कि भगवान के एक अंश, भगवान की एक शक्ति अंश अवतार महाराज पृथ्वी जब इस भौतिक जगत में आए थे उन्होंने उनकी इच्छा थी कि वो सो अश्वमेध यज्ञ करें। उनको इंद्र नहीं बनना था मगर उनकी इच्छा थी कि वो सो अश्वमेध यज्ञ करें, उनका बहुत इच्छा थी। परंतु इंद्र जो है वो उनको सो अश्वमेध यज्ञ करने नहीं दे रहा था, भगवान थे स्वयं, लेकिन फिर भी इंद्र क्या करते थे रोज रोज उनका घोड़ा चोरी कर लेते थे। वो ब्राह्मण का रूप धारण करके आते थे और पृथ्वी महाराज का घोड़ा चोरी कर देते थे। पृथ्वी महाराज को बहुत क्रोध आया, उसने सोचा कि इंद्र अपने आप को क्या समझता है, खाली यही बस कर सकता है अश्वमेध यज्ञ और कोई नहीं कर सकता, मुझे तो इसको मार डालना चाहिए। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, बोला इंद्र इसलिए आपका ये घोड़ा चुराता है क्योंकि वो समझता है कि अगर आप सो अश्वमेध यज्ञ कर लोगे फिर तो आप स्वर्ग के राजा बन जाओगे, फिर मेरा क्या होगा। लेकिन है ना आपको तो स्वर्ग का राजा नहीं बनना है, आप तो ये यज्ञ इसलिए कर रहे हो ताकि आप भगवान को प्रसन्न करो, तो छोड़ दो बस। आपने 99 यज्ञ किए ना, 99 यज्ञ उन्होंने कर लिए थे, अभी एक यज्ञ खाली रह गया था। तो ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि आप 99 यज्ञ पर ही भगवान खुश हैं, आप भगवान को खुश ही करना चाहते हो ना, तो भगवान इससे ही खुश हो गए हैं, बस आप सवा यज्ञ छोड़ दो, आपका रो ही नहीं, भले इंद्र को छोड़ दो, इंद्र का समय अभी समाप्त नहीं हुआ, आप तो भगवान हो, आप तो कर सकते हो, इंद्र का भी वध कर सकते हो, लेकिन आप क्योंकि उनका टाइम है अभी तक स्वर्ग में राजा बनने का तो उनको राजा बनने। तो कहने का अर्थ ये है कि स्वर्ग का राजा इंद्र जो है उसको बहुत बहुत विशाल मात्रा में सारे देवताओं से अधिक सुख प्राप्त होता है। तो इसे भगवान कहते हैं कि क्योंकि वो ग्रेटेस्ट है सारे देवताओं में इसलिए वो मेरा प्रतीक है, मेरा प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका मतलब है किसी भी देवी देवता को जब हम देखें तो हमें ये याद करना चाहिए कि इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की की शक्ति है, कृष्ण का पावर है, कृष्ण की करुणा है। कृष्ण ने इनको इस देवता के पावर्स दिए हैं, तभी वो ये सारे कार्य कर सकता है। वायु देवता पूरे संसार में पवन को फैलाते हैं, अग्नि देवता हर एक जीव के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हैं, और वरुण देवता जो हैं वो जल प्रदान करते हैं। ये सारे देवता जो हैं वो भगवान का ही एक अंश हैं, और जो इंद्र हैं इन सब के राजा वो साक्षात भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे देवताओं को देखकर भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है, देवताओं की शक्ति को देखकर भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है। आगे भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। अभी जैसे हम सब जानते हैं कि इंद्रियों में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। आंख कान नाक त्वचा और रसना ये ज्ञान इंद्रियां हैं, और हाथ पैर जिह्वा लिंग तथा गुदा ये कर्म इंद्रियां हैं, और मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर हैं। लेकिन भगवान ने फिर भी कहा इंद्रियाणा मनस्यास्मि कि मैं इंद्रियों में मन हूँ। इंद्रियों में तो मन नहीं इंक्लूड होता है ना, इंद्रियों में तो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां इंक्लूड होती हैं, लेकिन वास्तव में ये सारी इंद्रियां जो हैं वो महातत्व से भौतिक तत्व से मिलकर बनी है। 5 महाभूत अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल इनसे बनकर ये सारा शरीर बना है। लेकिन मन जो है वो मन एक ऐसी सूक्ष्म शरीर है जिसके सहायता से ये इंद्रियां कार्य कर रही हैं। इसलिए मन को 6 सेंस कहा जाता है, 6ठी इंद्रिय कहा जाता है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और जब तक मन उसके साथ सम्मिलित नहीं होता है वो ज्ञान इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। भले आंख देख रही, समझो मन आपका किसी भी वस्तु पे नहीं आया है, आंख भले कोई भी दृश्य देख ले, कान यदि कुछ भी श्रवण कर ले, जीवा को यदि कुछ भी खला दिया जाए, यदि मन जो है वो उस पे अटैच नहीं होता है तो इंद्रियां जो है वो कुछ नहीं कर सकती। इंद्रियों के पास इतना पावर नहीं है कि वो कोई गलत कार्य करे। कोई गलत या सही कार्य करने की इच्छा जो है वो आपके मन में आती है तभी वो इंद्रियों को जो है वो भड़काती है, वरना इंद्रियां खुद से तो समझो ऐसे है जैसे दंत विहीन सर्प। ऐसा सर्प जिसके जहरीले दांत निकाल दिए गए हों फिर वो भले कितना ही किसी को डसे क्योंकि उसके पास जहर है ही नहीं, तो फिर भला वो उससे क्या होगा। तो इंद्रियों के अंदर जब तक मन नहीं होता है तब तक जीव अपराध नहीं करता है। अभी देखो इसीलिए क्या होता है, अपराध कौन करता है जानते हो? अपराध मन की इच्छा के कारण होता है। जब तक मन के अंदर इच्छा उत्पन्न नहीं होती है इंद्रियां भले कुछ भी देखें, अब देखो लेकिन फिर भी वो अपराध नहीं करोगे आप। लेकिन शुरू में क्या होता है, इंद्रियां एक वस्तु को देखती हैं। समझो किसी पुरुष ने किसी स्त्री को देखा तो मन के अंदर इच्छा हुई कुछ गलत कार्य करने की। तो जब तक उसके अंदर इच्छा उत्पन्न नहीं होगी तब तक वो नहीं करेगा, लेकिन इच्छा उत्पन्न हुई तो फिर मन इंद्रियों का साथ देगा और फिर इंद्रियां गलत कार्य करेंगी। अब अपराध कर रही है इंद्रियां और मन, बुद्धि उसको वो तरीका बताती है कि ठीक है तुम इस तरह से करोगे तो ये तुम्हारे पास तुम्हारे इच्छा तुम्हारी इस तरह से पूरी होगी। तो मन बुद्धि और ये इंद्रियां मिलकर अपराध करती हैं। लेकिन सजा किसको मिलती है जानते हो? सजा मिलती है हमारी आत्मा को। हृदय के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है जिसका लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, वो हर एक ना जन्म में उसको जाना पड़ता है। कभी कुत्ते के शरीर में जाना पड़ता है, कभी गधे के, कभी सुअर के शरीर में जाना पड़ता है। अपराध किसका है? अपराध को तो शरीर और मन का है, फिर सजा आत्मा को क्यों मिलती है? इसका उत्तर भगवान आगे कहते हैं भूतानाम अस्मि चेतना, कि जीवों के अंदर में चेतना हूँ, है ना। जीवों के अंदर चेतना यानी जितने भी शरीर हैं उनके अंदर में आत्मा हूँ, तो वास्तव में मन किसी वस्तु को तब तक स्पर्श नहीं कर सकता, किसी वस्तु की तब तक इच्छा नहीं कर सकता जब तक आत्मा की स्वीकृति न हो, है ना। जब तक किसी जीव के अंदर आत्मा नहीं है तो मन कुछ नहीं कर सकता। मन किसी के अंदर आकर, इसीलिए देखो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पदार्थ तथा जीव में यह अंतर कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती है। अभी कितना ही बड़ा विशाल पर्वत हो, बहुत बड़ा विशाल पर्वत हो और उसके साइड में एक छोटा सा मनुष्य खड़ा हो, तो उनमें बड़ा कौन है, उनमें कौन महान है। भले ही आपको दिखने में बहुत विशाल लगता है पर्वत, मगर वो मनुष्य यदि अपनी बुद्धि का उपयोग करे तो उस पर्वत को चूर चूर कर सकता है। पर्वत के अंदर कोई पावर नहीं है क्योंकि वो निर्जीव है। उसी तरह से जो पदार्थ हैं, चाहे वो शरीर हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे मन हो, ये कभी भी तब तक कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं है। तो पदार्थ और पदार्थ मतलब भौतिक सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, चाहे ये शरीर है और आत्मा, उसके अंदर इतने फर्क क्या है चेतना का। क्योंकि चेतना नहीं हो तो सब कुछ निर्जीव है। तो अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। ये चेतना शाश्वत है, इसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है। जो कुछ संसार में हो रहा है वो इस शरीर के अंदर आत्मा है तभी हो रहा है। अगर उस शरीर के अंदर आत्मा निकाल दी जाए, आत्मा के साथ शरीर का संबंध छूट गया, फिर उस शरीर के सामने चाहे करोड़ स्त्रियों को किसी भी स्थिति में लाके खड़ा कर दो, उसका मन किसी के पर नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है, है ना। वो अपराध इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। वो पुण्य इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। इसी तरह ये मन और इंद्रियों का कैसे है कि जैसे एक रिवॉल्वर हो, ठीक है, रिवॉल्वर खुद से खतरनाक नहीं होती है। जैसे इंद्रियां, जैसे मैं आपको बता रही थी दंत विहीन सर्प, तो इंद्रियां खुद से खतरनाक नहीं होती है ना। रिवॉल्वर अगर किसी को मारोगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सर पे थोड़ी सी चोट लगेगी, जान से थोड़ी मरेगा। रिवॉल्वर से कोई नहीं मरता, रिवॉल्वर के अंदर जो गोली होती है ना वो उसको मारती है। किसको मारती है, कोई भी जो आपका शत्रु होता है उसको मारती है। रिवॉल्वर की गोली ने अपराध किया है, लेकिन फिर भी सजा किसको मिलेगी, जिसने रिवॉल्वर चलाई है। कोई भी पुलिस वाला ये आकर थोड़े कहेगा कि देखो ये गोली जो है वो पिस्तौल से निकली है, इसे पिस्तौल को लॉकअप में रख दो, या क्योंकि इस गोली ने हत्या की है इसलिए इस गोली को है ना सजाए मौत दी जानी चाहिए। नहीं, वो यही बोलेगा कि क्योंकि इस गोली को चलाने वाला ये व्यक्ति है और ये सारी मास्टरमाइंड प्लानिंग जो है वो इस व्यक्ति की थी, इसलिए इस व्यक्ति को सजा देनी चाहिए। उसी तरह से इंद्रियां अगर कोई अपराध कर रही हैं, अगर कोई कार्य कर रही है, देख रही है अपने विषयों की ओर, लेकिन फिर भी जब तक मन उसकी सहायता नहीं करेगा, इंद्रियों से कभी अपराध नहीं हो सकता। मन और बुद्धि से सहायता मिलेगी तभी इंद्रियां अपराध करेंगी, और मन और बुद्धि से कब सहायता मिलेगी, जब उसके अंदर आत्मा होगी। इसीलिए आत्मा को ही कष्ट भोगना पड़ता है। करोड़ों जन्मों से आत्मा भगवान से बिछड़ी हुई है और बारंबार इस भौतिक जगत में आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि वो मन और बुद्धि की बात को मान रही है। मन और बुद्धि जो जैसा डिसीजन लेती है तो आत्मा उसकी स्वीकृति करती है। लेकिन भगवान बहुत ही सुंदर बात बताते हैं भगवद गीता में, चैप्टर 3 वर्स नंबर 42 भगवान बताते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परसस्तु सः। कि इंद्रियों से जो जड़ पदार्थ है, यानी जो इंद्रियों के विषय हैं, उनसे इंद्रियां प्रबल हैं उनके अंदर, फिर भी क्योंकि वो अटैच हैं शरीर के अंदर, इसलिए वो जड़ पदार्थ जो है उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। और इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है, मन, और मन से श्रेष्ठ क्या है, इंद्रिय भी परम मना मनसस्तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और यो बुद्धि परसस्तु सह, और बुद्धि से भी अधिक उच्च है वो है आत्मा। तो इसलिए जीव आत्मा के कल्याण करने की बात, क्योंकि जीव आत्मा बहुत निर्बल हो गई है आज। हमारी जीव आत्मा जो है वो इसलिए, क्योंकि जिस तरह हम अपने शरीर को रोज भोजन खिलाते हैं ना, रोज भोजन खिलाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर बहुत ज्यादा रुष्ट पुष्ट हो जाता है, बहुत उसके अंदर पावर आता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि एक शरीर को 10 दिन तक खाना नहीं दिया जाए, तो पहले भले वो कितना ही बलवान हो, परंतु फिर भी वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल निर्बल हो जाएगा। उसी तरह हमारी जो आत्मा है उसका जो भोजन है ना, वो है हरि नाम स्मरण, हरि कथा, भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण और भगवान की पवित्र नाम का जप। ये हमारी आत्मा का भोजन है, क्योंकि हम उसको ये दोनों चीजें तो दे रही नहीं है उसको, केवल हम क्या करते हैं, केवल शरीर को अधिक से अधिक खिलाते हैं, अधिक से अधिक रुष्ट पुष्ट करते हैं, तो हमारी इंद्रियां और मन जो है वो पावर वाले हो जाते हैं। और आत्मा को रोजाना, क्योंकि हम भगवान की भक्ति नहीं बताते, भगवान की कथाएं नहीं बताते, भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं कराते, तो फिर क्या होता है, वो आत्मा को मार मार की, और क्योंकि दुर्बल तो हो ही गई है, फिर उसको दबा देते हैं। आत्मा फिर क्या कहती है, ठीक है आप लोगों को जो करना है करो, मैं आपको पूरी सहायता करूंगी। आत्मा अभी बिल्कुल निर्बल हो गई है, इसलिए मन और बुद्धि की बात मानकर गलत कार्य हो रहा है सब कुछ। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे उपनिषदों में बताया जाता है कि ये शरीर एक रथ है, ठीक है, यानी ये जो शरीर है उसकी इंद्रियां जो है वो रथ हैं, और जो मन है वो एक लगाम है, बुद्धि है वो सारथी है, और जो उसके अंदर मालिक बैठा हुआ है ना, जिसको ये रथ को चला के जिधर लेके जाना है, वो अंदर जो महारथी बैठा हुआ है, जो सवार है इसके अंदर, उसको ऑर्डर देना चाहिए ना कि भाई अभी उसको सारथी को बताना चाहिए कि आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, और सारथी जब लगाम खींचेगा तो इंद्रियों को उधर जाना चाहिए। लेकिन वो जो सारथी जो है ना, वो अपने ऑर्डर अलग से उस महारथी की बात तो सुन ही नहीं रहा है, उसको जब भी वो बोलना चाहता है, कभी कभी हमारी आत्मा अंदर से हमें बोलती है कि क्यों हम इन भौतिक जगत के फसाद में अपने आप को दुखी कर रहे हैं, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हर एक संसार में जितने भी जीव है ना, उनके हृदय में कभी कभी ये विचार आता होगा कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने उसको नरिशमेंट दी नहीं है, आत्मा इतनी दुर्बल होती है, तो जब ये बोलने वाली होती है ना, तो सारथी जो क्या करता है, वो उसको और भी एक ठोंसा मार के चुप करा के गिरा देता है, बोला चुप करके बैठो, जिधर भी ये इंद्रियां भागेंगी ना, उधर मैं इस लगाम को खींचूंगा, और बुद्धि जो है ना वो खींच खींच के उनको और भी इंद्रियों को और मन की ख्वाहिशों को इंद्र तृप्ति की ओर लेके जाएगी। और उस महारथी जो बैठा हुआ है ना, वो जब बोलने वाला होगा ना, तो उसको और भी चुप करा देगी, जोर से थप्पड़ मार के बोले चुप करो। उसी तरह यही हालत हमारी है, इंद्रियां जो है वो विषयों की ओर देखती हैं, मन जो है वो इच्छा करता है, और बुद्धि प्लानिंग करके उस अपराध को करने में सैंक्शन दे देती है कि ठीक है हाँ इस तरह से तुम अपराध कर सकते हो। हमने आत्मा को कितना निर्बल बना दिया है, लेकिन अब क्या करना है। भगवान कहते हैं भूतानाम अस्मि चेतना, जीवों के अंदर जो चेतना है वो मेरा अंश है, वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है। तो हमें क्या करना है, भगवान के इस अंश को, भगवान के इस प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा को प्रबल करना है। एक बार हमारी आत्मा जो है वो प्रबल हो जाए, कैसे होगी, जब वो भगवान की कथाओं को श्रवण करेगी, जब भगवान के पवित्र नाम का जप करेगी, तो धीरे धीरे आत्मा के अंदर इतना पावर आ जाएगा, इतना पावर, क्योंकि अब देखो आत्मा कितनी निर्बल हो गई है, अपराध कर रहा है मन, अपराध कर रही इंद्रियां, और बार बार कभी उसको कुत्ता बनना पड़ता है, कभी गधा बनना पड़ता है, कभी सुअर बनना पड़ता है, कभी मच्छर बनना पड़ता है, तो आत्मा बिल्कुल निर्बल है, वो शरीर और मन के हाथों बेबस हो गई है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, आत्मा को पावर देना है, भगवान के पवित्र नाम का जब उसे कैसे भी करके सुनाना है। फिर वो मरी हुई बिल्कुल निर्बल आत्मा धीरे 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 स्वस्थ होने लगेगी, उसके अंदर पावर आएगा। फिर यदि बुद्धि कोई गलत निर्णय करेगी तो उसको बुद्धि को वो समझाएगी कि नहीं, मैं सारथी, मैं महारथी हूं ना, मेरे ऑर्डर के हिसाब से सारथी चढ़ाएगा ना। जो भी जैसे हमारा ड्राइवर होता है, वो अपनी मति से तो कभी भी हमारी गाड़ी को नहीं चलाएगा ना, जिधर हम बोलेंगे कि भाई अभी इधर चलो, अभी इधर चलो, अभी उधर कहेगा ना। तो उसी तरह से हमारा ये शरीर जो है वो हमें इसलिए मिला है कि इस शरीर के द्वारा हम हमारी बुद्धि से इस तरह से इस शरीर को ड्राइव करें कि हम भगवान के धाम तक पहुंच सकें। लेकिन वो धाम का रास्ता जो है वो आत्मा बताएगी। आत्मा के अंदर जब हम भगवान की भक्ति करेंगे ना, सवय पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे, भगवान की भक्ति की, भगवान अधोक्षज की जब हम भक्ति करेंगे तो अहितुकिया प्रतीता ययात्मा सुप्रसिद्धति, तो वो भक्ति से आत्मा प्रसन्न होती जाएगी, आत्मा पावर आता जाएगा। फिर वो बुद्धि को समझाएगी कि देखो खबरदार, जो तुम गलत रास्ते पर चली लेके गई तुम मेरे मन और इंद्रियों को, ये गलत रास्ते में जाएंगी तो फिर मुझे तो दूसरे जन्म में कुत्ता गधा बनना पड़ेगा ना। अभी सीधा सीधा जिधर मैं बोल रहा हूँ उधर चलो, भगवान के पास जाने के लिए ये शरीर मिला है। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य करें कि हमारी आत्मा प्रबल हो जाए और मन इंद्रियों और बुद्धि के ऊपर कंट्रोल कर सके। आज हम इसीलिए दुखी हैं क्योंकि मन इंद्रिय और बुद्धि जो है वो हमारी आत्मा पर कंट्रोल किए हुए हैं, और इसीलिए जीव खुश हो नहीं सक रहा है, क्योंकि वास्तव में जीव आत्मा है और आत्मा का कल्याण, आत्मा का आनंद तभी है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे आत्मा के बगैर शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई महत्व नहीं होती है, उसी तरह से इस आत्मा का कोई महत्व नहीं होता है जब वो भगवान की भक्ति नहीं करती है। इसलिए संत कहते हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवन शव समान सो प्राणी। वह व्यक्ति जिसके जीवन भगवान की भक्ति नहीं है, वो तो चलती फिरती लाश है, भले दिख रहा है वो चल रहा है लेकिन वो लाश की तरह है। वो गाड़ी जिसका महारथी पड़ा हुआ है, वो भले कितना ही फास्ट चला रहा है ड्राइवर, लेकिन उसका क्या फायदा, क्योंकि वास्तव जो आत्मा है वो तो बिल्कुल मरी हुई है। तो यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो समझो हमारी आत्मा, भले हमारा शरीर चल रहा है, एक मुर्दे की तरह चल रहा है। हरि भक्ति सदोदय में है लिखा हुआ है, भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जपह तप। अगर भगवान की भक्ति नहीं करता है फिर उस शरीर के ऊपर चाहे कितना ही उच्च जाति का लेबल लगा हुआ हो, चाहे कितना ही उसने एजुकेशन प्राप्त किया हो, चाहे कितना ही जप और तपस्या भी कर रही हो, लेकिन यदि वो भगवत भक्तिहीन है यानी भगवान की भक्ति नहीं करता, तो अप्राणस्य यह देहस्य, जिस प्रकार से किसी देह से प्राण निकल जाते हैं, फिर उसको भले कितना ही आप डेकोरेट करो, कितने ही अच्छे अच्छे आभूषण पहनाओ, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ, परंतु वो क्यों, क्या फायदा, इसके अंदर शरीर के अंदर जान ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है। फिर उसको कितना ही बहुत ही अद्भुत श्रृंगार करके, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर से उसको श्रृंगार करके लेकर आओ और उसको बहुत सारी है ना ज्वेलरी पहनाओ, आभूषण को पहनाओ, लेकिन इतने सारे आभूषण पहना के उसको डिस्प्ले करने की क्या आवश्यकता है, उसका तो कोई कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि वो तो मरा हुआ है। वो क्या कर रहे हैं, मंडनम लोक रंजनम, केवल दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर तो कोई प्राण ही नहीं है। उसी तरह से यदि किसी जीव के अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान के साथ प्रेम नहीं है, तो भले उसके अंदर कितनी ही बड़ी बड़ी क्वालिटीज क्यों ना हो, वो मुर्दा के समान है, मरे हुए के समान है, अप्राणस्य यह देहस्य। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, जिससे हम अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकें। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं. हरे कृष्ण.